तो मित्रों, आप सुन ही चुके हैं बजट 2016 के बारे में और इसमें क्या कुछ कहा गया है। अब आइए एक नज़र डालते हैं कि 2016 के बजट का एक औसत परिवार पर क्या असर हो सकता है। और इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं सीनियर लेक्चरर ऑफ इकोनॉमिक्स मोनैश बिजनेस स्कूल के डॉक्टर विनोद मिश्र के साथ। मिश्र साहब, आपका हिंदी कार्यक्रम में स्वागत करते हैं।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
बताइए कि ट्रेजरर स्कॉट मॉरिसन ने इस बजट को एक इकोनॉमिक प्लान कहा है और कहा है कि दिस इज अ बजट फॉर ग्रोथ, तो आपको क्या लगता है?
कुमुद जी, बजट के बारे में एक जनरल सी बात पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसा लोगों को उम्मीद था कि इलेक्शन के ठीक पहले ये जो बजट पेश किया जा रहा है, शायद इसमें बहुत कुछ लोकप्रिय आइटम होंगे, जनता को लुभाने वाली बहुत सी सारी चीजें होंगी, उतनी सारी चीजें नहीं है। बजट एक सामान्य सा बजट है बहुत सारे मामलों में देखा जाए, और एक कंजर्वेटिव, जिसे कहते हैं इकोनॉमिकली कंजर्वेटिव टाइप का बजट है।
जी, अब ये देखें, बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस, छोटे व्यापारों को तो कुछ फायदे हो रहे हैं, कुछ अन्य फायदे भी हैं, लेकिन उनको दूर छोड़ते हुए एक औसत परिवार पर नजर डालें। मान लीजिए कि एक माइग्रेंट परिवार है, भारतीय देसी परिवार है, जिसके दो बच्चे हैं, तो ये बताइए उन पर कितना असर होगा, उनकी इनकम टैक्स में क्या कोई फेरबदल आएगा?
जी, इन्होंने जो है एक जो उच्च मध्य वर्ग के लोग आप कहेंगे, मतलब मध्य वर्ग से थोड़ा सा ऊपर, जिनकी तनख्वाह समझिए 80,000 से 90,000 के बीच में है, उनको जरूर फायदा हुआ है। तो पहले क्या था कि 80,000 सालाना कमाने वाला आदमी जो है दूसरे सर्वोच्च आय सीमा में आ जाता था
जी,
अभी उसको उन्होंने बढ़ाकर 87,000 कर दिया है। तो 87,000 तक आप सेकेंड हाईएस्ट ब्रैकेट में नहीं आएंगे, तो आपकी टैक्स की बचत होगी, लोअर टैक्स पे रेट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा ये है कि एक्चुअली इसका बजट से डायरेक्टली लेना देना नहीं है, जैसे पिछले हफ्ते आपने सुना होगा कि डिफ्लेशन फिगर्स रिलीज हुए हैं।
हाँ।
जिससे पता चला है कि यहाँ पर महंगाई जो है जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा नहीं बढ़ रही है, तो ये एक अच्छी खबर है एक सामान्य परिवार के लिए कि फूड, कपड़े और ईंधन की कीमतें काफी नियंत्रण में है। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो कल रिजर्व बैंक ने रेट कट किया है, इंटरेस्ट रेट कट किया है, मतलब ब्याज दर कम की है
जी।
तो अगर एक परिवार जिसने जिसका घर होम लोन पे है, मोर्टगेज ले रहा है, तो उसको इससे थोड़ी राहत जरूर मिलेगी।
ठीक है, चलो, ये तो राहत की बातें हुई कि मॉर्गेज पर थोड़ा सा ब्याज कम होगा और रहन सहन का खर्च अधिक बढ़ेगा नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये बताइए कि शिक्षण देसी लोगों के लिए या सभी लोगों के लिए, बच्चों की शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, तो क्या शिक्षण पर कुछ प्रभाव पड़ेगा इस बजट का?
देखिए, अगर एक्चुअली शिक्षा को आप तीन नजरिए से देखिए, सबसे पहले तो ये है बच्चों की शिक्षा, जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं।
हाँ।
और जब हम बात कर रहे हैं सरकार और बजट की, तो इसमें मायने रखते हैं वो बच्चे जो पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो कि लोक शिक्षा ले रहे हैं।
ठीक।
तो सरकार ने पब्लिक एजुकेशन के लिए 1.2 बिलियन अतिरिक्त खर्च करने की बात इस बजट में की है। देखने में लगता है कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि ये उतना खर्चा नहीं कर रही है जितना कि 2013 में टोनी एबट की सरकार ने प्रॉमिस किया था, जो बेसिकली गोंस्की योजना के तहत जितना पैसे मांगे गए थे सरकारी स्कूलों के लिए, उतने पैसे ये नहीं है, उससे थोड़े कम है। तो शायद इससे जो है जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको शायद थोड़ी निराशा होगी इस बजट की वजह से।
और यूनिवर्सिटी,
हाँ, दूसरी चीज है उच्च शिक्षा, यूनिवर्सिटी जिससे मैं खुद भी जुड़ा हुआ हूँ। खैर, तो आप अगर याद करें तो पिछली बार जो है जो टोनी एबट सरकार ने बजट प्रेजेंट किया था, तो उसमें कहा था कि वो यूनिवर्सिटी सिस्टम को डीरेगुलेट करेंगे और यूनिवर्सिटीज को ये अधिकार देंगे कि वो अपनी फीस खुद से सुनिश्चित कर सकें, जितनी चाहे फीस ले सकें, जिसका काफी विरोध हुआ था। लोगों का कहना था कि विश्वविद्यालय बहुत मनमाने ढंग से फीस चार्ज करेंगे स्टूडेंट से और इससे उच्च शिक्षा प्रभावित होगी। तो सरकार ने उस योजना को तो खैर स्थगित कर दिया है, यूनिवर्सिटीज को फीस नहीं अपने हिसाब से निर्णय लेने का अधिकार दिया है, लेकिन बजट में ये कहा गया है कि वो उच्च शिक्षा क्षेत्र से $2 बिलियन की बचत की उम्मीद रखती है। इसको इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है कि ये $2 बिलियन की बचत आएगी कहाँ से उच्च शिक्षा क्षेत्र से, लेकिन जैसा मेरा अनुमान है, संभावित है कि बहुत सारे अनुदान में जो है कमी की जाएगी, शायद साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च में कमी हो, या जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग जो कि स्कॉलरशिप पर निर्भर होते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, शायद
जी
स्कॉलरशिप में कुछ कमी की जाए, या फिर जो है कुछ विश्वविद्यालय शायद इस बचत को एकोमोडेट करने के लिए हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर कुछ इसका बोझ बढ़ा दें
बढ़ा
बढ़ी हुई
देंगे।
फीस के रूप में, ये एक डर जरूर है।
तो ये तो रहा शिक्षण के बारे में, तो इसका भी नजारा बहुत आशावर्धक तो नहीं लग रहा है। चाइल्ड केयर फैसिलिटीज,
हाँ, चाइल्ड केयर, अब एक्चुअली निराशा वाली बात थोड़ी सी चाइल्ड केयर में भी है, लेकिन सरकार ने ये कहा है कि वो एक साल के लिए जो उन्होंने पिछले बजट में चाइल्ड केयर सब्सिडी के नाम से जो मतलब जो प्लान बनाए थे, जो कि काफी पॉपुलर थे पिछले बजट में, उनको अभी इम्प्लीमेंट यानी कि लागू ना करने से उन्होंने एक साल के लिए टाल दिया है। बोला है कि ये लागू तो होंगे लेकिन ये एक साल बाद लागू होंगे, पहले था कि वो इस साल लागू होंगे
जी
लेकिन अभी उन्होंने एक साल के लिए उसे स्थगित कर दिया है। अब इस स्कीम में क्या था कि जो पहले अभी जो दो टीयर सिस्टम है, चाइल्ड केयर सब्सिडी और चाइल्ड केयर रिबेट वाला, उसको हटा के गवर्नमेंट ने कहा था कि वो एक सिंगल सिस्टम होगा और वो काफी जो है जेनरस पेमेंट करेगा लोगों को। तो एक औसत परिवार को जिसमें जो है उम्मीद थी कि करीब हर हफ्ते $30 ज्यादा मिलेंगे, और जो $65,000 से कम कमाने वाले परिवार हैं उनको करीब करीब 85% उनकी चाइल्ड केयर सरकार पे करती। लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि हम उस स्कीम के लिए कटिबद्ध हैं पर अभी उसको लागू नहीं कर रहे हैं, एक साल बाद लागू करेंगे। अब एक साल बाद में एक एक अनसर्टेनिटी ये है कि पता नहीं इलेक्शन के बाद फिर से यही सरकार आए कि ना आए, और जो सरकार आए
जी
वो इस
जी
कमिटमेंट को पूरा करे या
पूरा
ना करे।
करेगी नहीं सरकार की, और अगली सरकार बनने की बात तो करूंगी। बस हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, कुछ इसमें निराशा है या कुछ आशा हो रही है?
हेल्थ बेनिफिट्स में अगर आप इस क्षेत्र को थोड़ा सा कुछ समय से अगर अध्ययन कर रहे हो तो देखेंगे कि 2014 से ही केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में एक खींचतान चल रही है। इसमें मुख्य मुद्दा है कि हॉस्पिटल की फंडिंग कैसे आएगी।
जी
सरकार ने एक प्लान फंडिंग का दिया था केंद्र सरकार ने, जिसे राज्य सरकार सहमत नहीं हुई है और राज्य सरकार से केंद्र सरकार सहमत नहीं हुई है। ये खींचातान अभी भी चल रही है और उसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया है। इस बजट में उन्होंने बोला है कि 2.9 बिलियन जो है वो लोग और खर्च करेंगे, लेकिन ये खर्चे 2017-18 और 18-19 तक के लिए ही हैं।
ठीक
तो
है
अभी जो है आपका जो पब्लिक हॉस्पिटल सिस्टम है उसमें 2019 तक 20 तक की फंडिंग का मामला अभी तक बन पाया है, लेकिन उसके आगे क्या होगा एक अनिश्चितता का माहौल इसमें अभी भी बना हुआ है।
और सरकार ने परिवार से हटते हुए वीजा अरेंजमेंट्स इन की मार्केट्स की बात कही है, तो ये जरा समझाइए क्या होगा इससे?
इसके बारे में अभी ज्यादा डिटेल नहीं दिए उन्होंने, लेकिन ये कहा है कि ये लोग जो है ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं, खासकर उन मार्केट्स के लिए जहां से भारी तादाद में टूरिस्ट आते हैं और भारी तादाद में छात्र आते हैं पढ़ने के
जी
लिए।
और
उन्होंने चाइना को लेकर के ज्यादा स्पष्ट तरीके से बताया है कि 8 में से 8 कैटेगरी वीजा की हटा करके 2 कैटेगरी करेंगे। हिंदुस्तान के लिए भी उन्होंने एक की मार्केट आइडेंटिफाई किया है और ये भी कहा है कि जो सेफ लोग हैं जिनको आने से कोई खतरा नहीं है उनको 3 साल का वीजा देंगे, मल्टीपल ट्रेवल का वीजा देंगे। लेकिन मुझे लगता है इसमें थोड़ा और हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक सारे इसके बारे में तथ्य सामने ना आ जाए।
बिल्कुल, अंत में बस यही बताइए कि इस बजट को देखते हुए और सरकार का कार्य पिछले एक वर्ष से या 6 महीनों से देखें मालकम टर्नबुल का, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनावों में क्या नतीजे निकलेंगे?
मैं एक्चुअली इसमें अनुमान नहीं लगाना चाहता क्योंकि जैसा आप देख रही हैं ये बहुत ही एक अनिश्चित टाइप का चुनाव सामने आ रहा है जिसमें किसी भी पार्टी का कोई एक बहुत ही बढ़त दिखती दिख नहीं रही
स्पष्ट
है,
बढ़त नहीं दिखती,
स्पष्ट बढ़त
हालांकि
नहीं दिख रही।
लेबर का देख रहे हैं 51 पॉइंट कुछ
हाँ
परसेंट आ रहा है।
हाँ लेकिन अब ये देख रहे हैं कि 1-2% जो है वो जिसे कहते हैं ना मार्जिन ऑफ एरर भी हो सकती है,
बिल्कुल
क्योंकि
बिल्कुल
ये हर में 5 से 7% एरर मान के चलनी चाहिए। तो जिस तरह से जो है पिछले इलेक्शन में या उसके पिछले इलेक्शन में एक बहुत स्पष्ट बहुमत सामने आया था चुनाव को लेकर के, उसको लेकर थोड़ा सा आशंका है। और दूसरा, जैसे लोग बात कर रहे हैं डबल रेजोल्यूशन इलेक्शन की,
जी
मेरा अपना अंदाजा है कि शायद एक हंग पार्लियामेंट जैसी स्थिति ना उत्पन्न हो जाए।
ठीक है, आपने बहुत स्पष्ट रूप से हमें समझाया है कि क्या नक्शा बन रहा है और बजट का किस तरह एक औसत परिवार पर असर पड़ेगा। इसके लिए डॉक्टर मिश्रा हम आपके आभारी हैं।
जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए।
बहुत शुक्रिया।